ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय सांख्य योग का दर्शन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, और कुछ श्लोक पहले इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमने लिया था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और उसी पर आधारित हम पिछले कुछ हफ्तों से भगवान ने जो इसके आगे के श्लोक कहे हैं उस पर हम चर्चा किए हैं। परम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ है देखना, और परम का अर्थ है ऊंची दृष्टि से देखना। परह अर्थात इस भौतिक संसार का जो दृष्टिकोण है उससे परे देखना, या यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं भगवान के दृष्टिकोण की दृष्टि रखना। भगवान कैसे देखते हैं, या अंग्रेजी में एक शब्द है सुपर विजन, है ना। विजन का अर्थ हुआ दृष्ट्वा, और सुपर विजन का अर्थ क्या हुआ, परम दृष्ट्वा। तो भगवान यहां अर्जुन को वो परम दृष्टि या वो सुपर विजन दे रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने जो श्लोक लिया था तानि सर्वाणि संयम्य, ये पिछले हफ्ते का श्लोक है, युक्त आसीत मत परवशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि वो व्यक्ति वो प्रतिष्ठित रहता है किसमें, प्रज्ञा, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान में जो प्रतिष्ठित रहता है। ज्ञान, लेकिन कौन सा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, प्रकृष्ट रूपेण ज्ञान, तो वो है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। लेकिन यहां पर भगवान ने पिछले हफ्ते कहा कि युक्त आसीत मत पर, जब तक कि वो मत पर मेरे परायण नहीं होता तब तक वो उस प्रकृष्ट ज्ञान में या दिव्य ज्ञान में वो स्थित नहीं हो पाएगा। और इसलिए हमने अर्जुन की जो दुविधा मन स्थिति थी, जहां अर्जुन ये नहीं देख पा रहे थे कि क्या मुझे ज्ञान में स्थित रहना चाहिए या मुझे कर्म करना चाहिए, और उस दुविधा मन स्थिति को दूर करने के लिए भगवान ने फिर अपना ऐश्वर्य दिखाया कि तुम इन दोनों के परे, ज्ञान और कर्म दोनों के परे तुम भक्ति में लगो और तुम मेरे परायण होकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो ये जो पिछला श्लोक हमने लिया, ये पहला श्लोक अब गीता का इस दूसरे अध्याय में, जहां पर भगवान सीधे अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरी शरण आओ, सरेंडर अनटू मी, मत परह। तो पिछले हफ्ते हमने जीव के प्रगति पथ के 6 लक्षण सुने, पतन दशा, इंद्रिय भोग का कार्यक्रम, साक्षात्कार की शुरुआत, इंद्रिय भोग के विषय में भगवान श्री कृष्ण का मत क्या, समाधान की प्रक्रिया और उसकी शुद्ध अवस्था। और हमने उदाहरण लिया था पिछले हफ्ते, याद है, मधुमक्खी और मधुहा, जो वो पूरा मद, उसका जो शहद है वो पूरा जो चुरा लेता है, इतनी कठिनाई से वो मधुमक्खी वो शहद इकट्ठा करती है, लेकिन ये जो मधुहा है, हनी थीफ जिसे बोलते हैं, वो सब कुछ चुरा लेता है। उसी प्रकार से काल रूपी जो मधुहा है वो हम जितना कुछ इकट्ठा करें इस भौतिक संसार में वो सब कुछ चुरा लेता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन चाहे तुम जीतो या न जीतो ये युद्ध, ये हस्तिनापुर का राज्य तो खत्म होने ही वाला है, चाहे तुम उनको भी दे दोगे तो भी खत्म होने वाला है ये एक ना एक दिन, तुम जीत लोगे तो भी खत्म होने वाला है। तो फिर अर्जुन पूछे तो फिर क्यों ये इतना सारा बवाल क्यों करना। तब फिर भगवान ने वो जो मत परा कहा है, क्योंकि इसके द्वारा मुझे धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए तुम मैं जो कहता हूं वो करो, क्योंकि तुम अब वो जो ब्रॉड पिक्चर है वो नहीं देख पा रहे, अभी तुम केवल हार जीत हार जीत हार जीत यही देख रहे हो, तुम धर्म अधर्म की स्थापना नहीं देख पा रहे। तो इसलिए अब भगवान अर्जुन को उस इंद्रिय पथ की क्या दशा होती है उसे समझाते हुए आज का श्लोक कहें। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते। पुंसः का अर्थ होता है मनुष्य। भगवान कह रहे हैं कि जितने सारे मनुष्य वो जब विषय वस्तु पर ध्यान करते हैं, हमारे इंद्रियों के लिए, हमने बहुत बार इसकी चर्चा की है, हमारे इंद्रियों के लिए इंद्रियों के विषय वस्तु हैं, तो जब उस पर कोई ध्यान करता है, और कैसा ध्यान, कोई कच्चा ध्यान नहीं, बहुत पक्का ध्यान करता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ध्यान से उत्पन्न उपजायते, उपज कहते हैं ना, उपज उपजायते, उससे उत्पन्न उससे जन्म होता है किसका, संग अर्थात आसक्ति, और आसक्ति के पश्चात कामनाओं का जन्म होता है, और कामनाएं या इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध। तो पूरी भगवद गीता में यदि इस श्लोक का हम विश्लेषण कर देखें तो ये श्लोक बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल श्लोक है। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी भगवान ने जो श्रृंखला दी है श्लोक में, जिस प्रणाली में भगवान ने समझाया है, यदि हम अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो ये बहुत कुछ होता रहता है। जैसे भगवान ने कहा ध्यायतो, ध्यान किस पर, विषय वस्तु के ऊपर, जैसे आंखों के लिए कुछ बहुत सुंदर वस्तु देखने के लिए, या नाक के लिए कुछ सूंघने के लिए, कानों के लिए कुछ सुनने के लिए, ये सारे विषय वस्तु हैं। तो उस पर जब कोई अपना ध्यान जमाता है तो भगवान कहते हैं उस ध्यान अवस्था की अगली अवस्था है आसक्ति। किसके प्रति आसक्ति, उस वस्तु के प्रति आसक्ति। तत्पश्चात कामना। आसक्ति एक वेग टर्म है, अटैचमेंट, लेकिन इच्छाएं जो हैं वो फिर स्पेसिफिक होने लगती। तो यहां पर आगे भगवान कह रहे हैं कि वो ध्यान के वजह से आसक्ति, फिर कामनाएं। अब जब किसी के हृदय में या मन में कोई इच्छा या कोई कामना आती है तो दो चीजें होती हैं। कौन सी चीजें होती हैं दो, या तो वो कामना पूरी होगी या नहीं पूरी होगी, है कि नहीं। अब इस भौतिक संसार में देखिए हम कितनी कामनाएं करते हैं, कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठे, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डे ड्रीमिंग, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं यूएसए का राष्ट्रपति होता, यहां का प्रधानमंत्री नहीं यूएसए का राष्ट्रपति होता, और कई बार ख्वाब भी देखने लग जाते हैं कि हाँ मैं वहां पर सिलेक्ट व्हाइट हाउस में बैठा हूं। मैंने देखा कई बार लोग अपने घरों का नाम भी लिख देते हैं व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस में बैठे हैं, तो मतलब लोगों को लगता है कम से कम घर का नाम तो व्हाइट हाउस लिख दिया। तो एक है कि हम इच्छाएं कामनाएं करते हैं, ये इच्छा से क्यों कामनाएं पूरी होंगी, है कि नहीं। एक तो इच्छा करते हैं और उसके साथ एक और इच्छा ये भी करते हैं कि इच्छा पूरी हो, है ना। इच्छा पूर्ति हनुमान जी, है ना। कभी कभी मंदिरों का नाम भी ऐसा है। मैं जयपुर में था, वहां पर मैंने एक अजीब हनुमान जी का मंदिर देखा, ऊपर लिखा होता अर्जेंट हनुमान जी। पहली बार ये सब लोग बहुत अर्जेंसी में है, तो इसलिए हनुमान जी को भी अर्जेंट हनुमान जी, अर्जेंटली हमारी इच्छाओं को पूरी करो। तो एक है हमारी इच्छाएं कई बार अर्जेंट होती हैं, कई बार इतनी अर्जेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी इच्छा ये होती है कि वो इच्छा हमारी पूरी हो। जैसे एक पत्नी डॉक्टर के पास गई और बहुत उसको डिप्रेशन वगैरह सब हो रहा था, तो साइकेट्रिस्ट के पास गई, तो वहां पर वो साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर घर आई, अपने पति से कहती है कि मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि ये जो मेरा सब डिप्रेशन है वगैरह इसको दूर करने के लिए कहीं वेकेशन पर जाओ, स्विट्जरलैंड, पेरिस, यूरोप, अमेरिका, ऐसे वेकेशन पर जाओ। तो वैसे तो मैंने देखा कि खर्चा होगा उसमें, लेकिन फिर भी आप जो बोले, कहां चलें। उसने कहा दूसरे डॉक्टर के पास चलते। तो हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, स्विट्जरलैंड नहीं तो नागालैंड कहीं तो, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कितनी दफा होती है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में जो कहा है, ये दो दंडियां इसलिए हैं, अभी आप लोगों को लग रहा होगा आगे कुछ आया नहीं, खाली दो दंडियां निकाल दी, आगे क्या है, आने वाला है, कमिंग सो। तो कामनाएं पूरी होती हैं, नहीं पूरी होती। तो जब कामनाएं पूरी होती हैं तो भगवान कहते हैं लोभ उत्पन्न होता है कि हाँ ये मेरी कामना पूरी हुई तो फिर दूसरी भी पूरी होगी, दूसरी पूरी हुई तीसरी भी पूरी होगी, चौथी भी पूरी होगी, फिर वो लोभ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और अगर कामना पूरी नहीं हुई तब फिर क्रोध। तो देखिए ये दोनों जुड़वा भाई, लोभ और क्रोध, ये दोनों उसे छोड़ते नहीं अपने चंगुल से। इसलिए ये श्लोक कितना प्रैक्टिकल है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। यदि हम इस श्रृंखला को देखें कि शुरुआत कहां से होती है, जब हम बैठे बैठे किसी विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करते हैं, उसके बाद में आसक्ति, उसके बाद में उसकी कामनाएं, और फिर या तो पूरा हुआ या नहीं हुआ, और दोनों केसेस में या तो लोभ या फिर क्रोध। तो ये जो आज का पूरा श्लोक है उसका विश्लेषण, पूरा डाइसेक्ट कर ये आज का श्लोक बताया गया। अब संगस्तेषु उपजायते, तो संग, यहां पर इस संग जो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है ये बहुत मासूम लग रहा होगा हमें कि हाँ जैसे कि भक्तों का संग, कितने सारे संग हैं वैसे ये संग, लेकिन हमारे आचार्यों ने तीन इनकी उपमाएं दी हैं। एक अर्थ संग का बताया है संयोग होना, संयोग होने का अर्थ है संपर्क में आना। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में बैठकर यात्रा, यहां से दिल्ली या बंबई, तो आप ट्रेन में गए और आपके बगल में कोई पैसेंजर बैठा है तो उसके साथ अब क्या हुआ है, आपका संग हुआ है, बगल में बैठा है ना, तो संयोग होना। तो उस संग को क्या कहोगे आप? यहां पर कहा गया है कि केवल संपर्क हुआ है। कई बार आप बात भी नहीं करते बगल में कौन बैठा है, कई बार बात हो जाती है, कई बार पूरी यात्रा में वो देख रहा है आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो वो क्या कर रहा है, बात नहीं होती बिल्कुल। उसने कोई किताब खोली, कौन सी किताब, मैं भी खोलता हूं, वो ये कौन सी किताब, वो क्या खा रहा है, ये क्या खा रहा है, बस दोनों के आपस में एक दूसरे के ऊपर निरीक्षण चल रहा है, लेकिन वो कुछ वैसा संग नहीं हुआ। और फिर उसके साथ बातचीत चालू हो जाती, वो फोन पे किसी से बात कर रहा है, वो कौन सी भाषा में, अगर वो गुजराती में बात कर रहा है और ये भी गुजराती, अरे तुम ही पण, तो मराठी बोल दिया मैंने, क्या बोलते हैं गुजराती जो भी, तो वो भाषा, आप भी उधर के हैं, मैं भी उधर का, अच्छा उधर वो सोसाइटी, मैं भी वही सोसाइटी का, अच्छा आप भी तिड़के कॉल, मैं भी तिड़के, क्या वही बिल्डिंग, वही, अच्छा वही बिल्डिंग में, वही फ्लोर पे, पता ही नहीं है इधर मिले क्या। तो फिर धीरे धीरे मैत्री दोनों के बीच में, फिर अब मैत्री प्रस्थापित होती है। लेकिन जो तीसरा लेवल यहां हमारे आचार्य बताते कि फिर अनुराग, अनुराग का अर्थ क्या होता है कि आसक्ति। फिर तो अब देखिए, जब भगवान यहां पर संगस्तेषु उपजायते, कि जब हमारी इंद्रियां किसी विषय वस्तु के संग में आती हैं, तो एक लेवल है संपर्क में आना, बस उसके संपर्क में आना। हम उसकी चर्चा करेंगे कैसे हमारी इंद्रियां कई बार विषय वस्तु के केवल संपर्क में आती है लेकिन मैत्री स्थापित नहीं होती, और कई बार मैत्री भी स्थापित हो जाती है लेकिन अनुराग स्थापित नहीं होता। लेकिन अधिकांश अनुराग कब स्थापित होता है, जब हम ध्यान करते हैं उसका, उस विषय वस्तु का जब ध्यान करते हैं तब वो अनुराग में परिणित होता है। तो अब यदि हम हमारे शरीर के ढांचे को ले, तो जैसे भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में, ध्यायतो विषया पुंसा, कि एक मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा उनके विषय वस्तु पर ध्यान करता है। तो सबसे पहले यदि विषय वस्तु को जानना है तो इंद्रियों को जानना होगा, तो पांच हमारी इंद्रियां बताई गई, पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, हमारी आंखें, नाक, कान, ये जिह्वा और त्वचा। तो ये हमारा शरीर जो कि इन पांच इंद्रियों से बना हुआ है, और इन पांच इंद्रियों के लिए जो इनके विषय हैं, जैसे कि आंखों के लिए क्या है, रूप, आंखों के लिए रूप है, नाक के लिए गंध, कानों के लिए शब्द, जिह्वा के लिए रस और त्वचा के लिए स्पर्श। तो ये हमारे पांच इंद्रियों के विषय। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि एक पूरे दिन में हमारी ये पांच इंद्रियां कितनी बार कितने ऐसे विषयों के संपर्क में आती हैं, कोई गिनती है उसकी? ये हमारी आंखें, यदि केवल आंखें इनको ही लो, तो ये हमारी आंखें कितने अलग अलग प्रकार के रूप विषयों, उस प्रकार के विषय रूप विषय के संपर्क में आते। सबसे पहले उठते हैं तो अपना ही रूप देखते हैं, है ना, कि आज मैं कैसा दिख रहा हूं। तो वहां पर ये आंखें संपर्क में आई किसी रूप के, और फिर जो भी हमने पेपर खोला, पेपर में अलग अलग कितने सारे रूप, टीवी खोला, टीवी में कितने अलग अलग प्रकार के रूप हैं, फिर बाहर गए, कहीं नौकरी पे गए तो वहां पर अलग अलग, रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं वहां पर कितने सारे रूप हैं। तो ये हमारी एक इंद्रिय एक दिन में कितने अलग अलग प्रकार के विषयों के संपर्क में आती है। लेकिन इसके पहले वाली जो स्लाइड थी जिसमें भगवान संग का एक अर्थ बताएं कि केवल संपर्क में आए, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं हुई। इतने सारे रूप आंखों ने देख लिए, लेकिन उसमें कोई आसक्ति या अनुराग या मैत्री प्रस्थापित नहीं हुई है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द आज के श्लोक का क्या है? ध्यान, कंटेम्पलेशन। कि जैसे ही यदि हमारी आंखों को हम लें, हमारी आंखें यदि एक विषय वस्तु के ऊपर या एक रूप के ऊपर टिक कर ध्यान करना प्रारंभ करती है, तब वो केवल आंखें नहीं देख रही है, तब कौन देख रहा है? वो मन आंखों के द्वारा देख रहा है, है कि नहीं? वैसे ही बाकी सारी भी इंद्रियां यदि हम लें कि हम सुन रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे कान खुले हैं, खुले ना, कान हमारे खुले हैं, और ये कानों के अंदर अलग अलग प्रकार की ध्वनियां जा रही हैं एक साथ, बाहर बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज कानों में जा रही है, ये पंखा घूम रहा है इसकी आवाज जा रही है, और कुछ आवाज जा रही? हाँ, वो भी जा रही ना, तो ये आवाज भी जा रही है, लेकिन हमारा मन कौन सी ध्वनि के ऊपर अपना केंद्र जमाता है वो निर्धारित करेगा कि हम क्या सुन रहे हैं। अंग्रेजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग, कि हमारा मन निर्धारित करता है कि कौन सी ध्वनि को सिलेक्ट कर हम उस पर फोकस करें और उसे सुने। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन आपका ध्यान और कहीं पे, बोलते भी ना ध्यान और कहीं पे, तो आपका ध्यान और कहीं पे है तो वो थोड़ा, अरे सुन रहे हो कि नहीं, हाँ बोलो। जैसे आजकल ये जो सेलफोन है, सेलफोन में समझ में नहीं आता है कि वो सुन रहा है कि नहीं आपको, और कई ऐसे ऐसे ऑटोमेटेड होते हैं कि वो हाँ 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 बोलते जा रहे, वो है ही नहीं उधर, उसके आया जा रहा है, आया जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो सुन रहा है। और कई बार अगर कोई ऐसी बात बोल दो, कुछ पैसे वैसों की बात बोल दो कि उसके क्या हो, तो पैसे जो लिए थे, अरे कनेक्शन, हेलो कहाँ हो, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम सब सुनाई दे रहा है अचानक, वो जो उसका मन था उसने उसको बाहर निकाल दिया, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल दिया, ये सुनने का नहीं मेरे को। वैसे ही एक एक इंद्रियों को यदि ले, तो भगवान ने देखिए इस एक श्लोक में कितना गहरा गुह्य ज्ञान दिया है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो निर्धारित करेगा कि उस दिन का हमारा दिन कैसा रहेगा और हमारा पूरा जीवन, यदि हर दिन वैसा है तो हमारा पूरा जीवन फिर किस प्रकार का रहेगा। तो अब मन को यदि हम लें तो ये तीन चीजें मन के विषय में बताई गई है। इससे पहले हमने हमारा स्थूल ग्रोस बॉडी शरीर लिया था, पांच इंद्रियां, अब मन, क्योंकि केवल इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि मन, जो कि उनका सरदार है, इन इंद्रियों का सरदार कौन है? मन। तो जब तक कि मन इंद्रियों को नहीं कहीं पर केंद्रित करता तब तक इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, याद है वो संयोग में आना, मैत्री प्रस्थापित होना और अनुराग। तो सबसे पहले हमारे मन में कोई भी अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, अनगिनत विचार सुबह से लेकर रात तक आते रहते हैं। तो मन हर समय ये थिंकिंग मोड में तो रहता ही है, लेकिन केवल कुछ विचार होते हैं जब मन उसके विषय में महसूस करता है, उन्हें फीलिंग, उन विचारों को वो मन महसूस करता है। जैसे एक मैं बंबई में एक लेक्चर दे रहा था और मैंने देखा ऑडियंस में एक व्यक्ति, जब भी मैं कृष्णा बोलता तो एकदम उसकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती और बाकी जो भी कुछ एग्जाम्पल स्टोरी वगैरह में उसका ध्यान यहां हो, जैसे कृष्णा वापस उसकी आंखें। तो बहुत ऑब्वियसली मुझे दिख रहा था ये। तो फिर बाद में वो जो सेकेंड डे वो मुझसे मिलने आया तो मैंने उसको पूछ लिया कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं कृष्णा बोलता हूं तो आपकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, ध्यान से आप सुनते हो? हाँ, मेरा नाम कृष्णा है। तो देखिए, क्योंकि तुरंत उसको लगा, अरे मेरे को बुला, फिर समझ, अच्छा नहीं तो इनके भगवान को बुला। तो वैसे ही बहुत से विचार आते हैं, लेकिन कई ऐसे विचार होते हैं जिनको हम महसूस करते हैं। जैसे लेक्चर में अचानक कोई एग्जाम्पल में हमारा नाम कहीं पे, हमारा नहीं नाम होगा, किसी और को कोट कर रहा होगा स्पीकर, लेकिन हमारा भी वही नाम होगा, तो तुरंत हम फील करने लगे, महसूस करने लग जाते। लेकिन जो अंतिम उसका पद स्तर है वो है विलिंग, दृढ़ निश्चय कि जो सोचा वो महसूस किया, अब दृढ़ निश्चय उसके ऊपर, विलिंग। तो कितनी बार हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार इच्छाएं आती हैं, अगर वो केवल महसूस करने के स्तर तक रहे तो हम उसको अपने कार्य में नहीं लाते। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, और विलिंग के बाद क्या होता है? डूइंग। फिर हम उसको कार्य में लाते कि हाँ, अब वो दृढ़ निश्चय, कन्विक्शन आ जाता है कि ये करना ही है, क्योंकि मैं इसको महसूस किया हूं, उससे पहले मैंने इसको सोचा। तो ये, क्योंकि ये हिंदी में नहीं बोल पा रहे थे इसलिए अंग्रेजी में टाइप कर रखा है इसको, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ये जो हमारे मन में इच्छाएं आती हैं और उन इच्छाओं को हम कार्य में लाते हैं, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स। तो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस होते हैं हमारे अंदर, या हम उनको यदि दो श्रेणी में विभाजित करें तो एक है ये जो हमारा शरीर है, पांच इंद्रियां जिसकी चर्चा हमने की, उस स्तर पर एक स्टिमुलस होता है, और एक दूसरा होता है सूक्ष्म स्तर पर, हमारे आंतरिक मानसिक स्तर पर होता है। अब देखिए दोनों में कई बार मतभेद हो जाता है, किसमें? हमारे बाहरी स्थूल जो शरीर है उसके स्टिमुलस में और आंतरिक मन के स्टिमुलस में, दोनों में कई बार मतभेद हो जाता है। लेकिन बहुत बार यदि मन उन इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगाना चाहता है तो फिर उनमें मैत्री, उनमें मैत्री स्थापित पहले करता है, तब जाकर ही वो उसे भोग पाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे रिस्पॉन्स को बदल दे वो है फ्री विल। कि हां हमारे स्थूल शरीर ने हमें कुछ स्टिमुलस दिया। कैसा स्टिमुलस दिया? भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, तुरंत रिस्पॉन्स क्या होता है? खाओ कुछ। लेकिन इसके बीच में एक फ्री विल होता है, वो फ्री विल निर्धारित करता है कि क्या खाओ, कब खाओ, क्यों खाओ, कैसे खाओ, कितना खाओ, सब कुछ वो निर्धारित करता है। तो अक्सर यदि वो बीच में जो फ्री विल आ रहा है उसका हमने सही समय पर उपयोग नहीं किया तो हम देखते हैं कि लोग केवल स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बस इसी में जीवन बिताते रहते। जैसे कि आपने देखा होगा सब्जी मंडी में बहुत से जानवर यहां वहां घूमते रहते हैं, कुछ सब्जी यहां गिरी हुई मिल जाए खा लो, कोई बकरी या गाय या बैल। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि एक सब्जी मंडी में गाय मुंह मारती है, सब्जी सजाई हुई है, उसका ध्यान यहां वहां भटका, किसका? सब्जी वाले का। वो गाय ने मुंह मारा, तुरंत दंडा पड़ा। तो वो जानवर है, तो जानवर किस प्रकार से कि सामने देखा पालक चलो मुंह में, बीच में ये नहीं सोचा कि दंडा पड़ेगा। अब तो दंडा पड़ा तो सब दूर हो गई वो गाय। फिर थोड़ी देर बाद वापस दूसरे जगह पे देखा, इससे ज्यादा अच्छा पाल, वहां पर मुंह मारा, वहां पर भी दंडा पड़ा। तो वैसे ही हम यदि अपने मनुष्य जीवन में देखें तो हमारे मनुष्य जीवन में भी कई बार हमारी भी स्थिति ऐसी होती कि हमारे अंदर कुछ ऐसी तीव्र इच्छा एकाएक आ जाती है और हम तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, है ना। बहुत सी सारी चीजें, आंखों से कुछ देखना या जिह्वा से कुछ बोल देना, और बहुत से लोग पछताते हैं अचानक कुछ बोल दिया किसी को, अरे बाप, फिर एक बार वो शब्द निकल गए वो वापस तो नहीं ले सकते, वो तो गए अभी सुन लिया जिसने, तो तुरंत जब रिस्पॉन्ड कर दिया फिर बाद में समझता है कि अरे मुझे बीच में अपना जो स्वातंत्र्य रत्न है, क्या ये रत्न, कौन सा रत्न? फ्री विल, स्वेच्छा का रत्न इस्तेमाल करना चाहिए था। तो इसलिए यहां पर यदि हम स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों स्तरों पर देखें तो एक है इंडिकेटर्स और एक है मोटिवेटर्स। तो सूक्ष्म स्तर पर हमारे अंदर जो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस हमें प्राप्त होते हैं वो हमें मोटिवेट करना चाहिए, या उल्टा डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, ज्यादातर कलयुग में उल्टा होता है। लेकिन स्थूल स्तर पर केवल हमारा शरीर हमें अलग अलग प्रकार का इंडिकेशन देता है। जैसे कि अगर हम ये सारे फिजिकल इंडिकेटर्स लें जो हमारा शरीर हमें देता रहता है, संकेत इसका देता रहता है ना, जैसे अभी किसी ने खांसा, है ना, तो क्यों खांसा? क्योंकि शरीर ने संकेत दिया कुछ अटक रहा है, खांसो। अचानक कोई धूली नाक में चली गई, छींक आती, सर्दी छींक आती है ना। हरे कृष्ण का प्रवचन चालू हुआ, जम्हाई योनिंग चालू हो जाती, तो अंदर से अब ये सब फिजिकल इंडिकेटर्स हैं। यदि ये सारे इंडिकेटर्स हम देखें तो ये सारे इंडिकेटर्स के विषय में हमको ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है कभी प्रयास? अपने आप, अपने आप। यदि आप रात को सोए भी हो और अचानक कुछ गले में अटक गया तो अचानक आप खांसना शुरू कर देते, कहीं कोई मच्छर काट, अचानक आप हाथ जाता हो, खुजली आई, अचानक वहां पर खुजलाना प्रारंभ करते हो। तो इसे कहते हैं इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्टिव नेचर जिसे बोलते हैं। लेकिन ये जो है जिसके लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, ये केवल हमें इंडिकेट करते रहते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारे शरीर के अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। और जानवर भी इन इंडिकेटर को देखकर वो अपने कार्य करते रहते हैं। ज्यादातर जानवर जो हैं वो जो हम आगे चर्चा करेंगे उसमें नहीं जाते जानवर, जानवर केवल इसमें जाते हैं। किसमें? इंडिकेटर्स में। हाँ, नींद आई सो जाओ, जैसे कुत्ते हैं यहां के, हमारे वृंदावन कॉलोनी के कुत्ते हैं, जब मन किया भोको, कोई परवाह नहीं टाइम क्या हुआ है और लोग सो रहे होंगे थक हार के, कोई रात के 12 बजे मन किया, कोई देखा, चलो भोकना शुरू करो। अब इंसान यदि वैसा करना शुरू करे तो इसलिए बोलते हैं ना, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? तो इंसान जो है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो भी करे केवल अपने इंडिकेटर्स को देखकर नहीं करे, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर जो उसके सूक्ष्म मोटिवेटर्स हैं उसको देखते हुए वो कार्य करे। तो यदि हम कॉमन मेंटल मोटिवेटर्स को लें तो अब देखिए ये सारे जो हैं ये हमको अंदर से मोटिवेट करते हैं, है ना। और इसके उल्टा यदि हुआ तो क्या होता है? डीमोटिवेट। जैसे कोई प्रेम दिखा दिया, किसी ने प्रेम दिखा दिया तो, या अगर ये सब हम लें, कोई अच्छी से बात कर लिया, सुबह सुबह अच्छी से बात कर लिया हमसे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है, अरे आज सुबह सुबह किसी ने बहुत अच्छी से बात किया। इतना ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ये इतना पावरफुल है कि मान लो सुबह सुबह किसी कुत्ते ने भोंक दिया आपको, बिना मतलब कुत्ता भोंक दिया, तो वो आपके ऊपर भोका, आपको देख के भोका, और किसी को देख के नहीं भोका, बस दिन भर वो एक ग्लानी रहेगी, मेरे को देख के क्यों भोका, मैंने क्या बिगाड़ा उसका। किसी दूसरे इंसान ने आपको कुछ कहा वो तो छोड़ दीजिए, एक जानवर भी बिना मतलब आपको, आपसे दुर्व्यवहार कर ले तो वो मन में डिमोटिवेट थोड़ा कर देता है ना। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, लव, अफेक्शन, केयर, अटेंशन, एप्रिसिएशन, स्वीट स्पीच, जो कि आजकल बहुत रेयर है। आप यदि परिवार में हो तो परिवार में कितने लोग एक दूसरे के साथ आजकल मधुर वाणी तो छोड़ दीजिए, बात भी करते हैं क्या? कई बार तो परिवार के अंदर ही वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं रहते, तो प्रेम, वो अफेक्शन, केयर, अटेंशन, एप्रिसिएशन, वो सब तो छोड़ दीजिए। अब ये सारी चीजें हम मनुष्यों के लिए भगवान ने इतने सूक्ष्म तरीके से दी है, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल कर कर हमें भगवान की भक्ति करनी है। एक है फिजिकल इंडिकेटर्स, फिजिकल इंडिकेटर से तो हम भगवान की सेवा में अपने सेंसेस को लगाएंगे, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि हम मेंटल मोटिवेटर्स से हम कितना मोटिवेट हुए हैं भगवान की भक्ति के प्रोसेस से, है कि नहीं। तो हम अपने आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे होंगे, लेकिन क्या आंतरिक रूप से भगवान के उस दर्शन ने हमें मोटिवेट किया है? क्या हम जिह्वा से भगवान का प्रसाद खा रहे होंगे, लेकिन क्या आंतरिक तरीके से उस प्रसाद ने मुझे मोटिवेट किया है क्या भगवान की सेवा करने के लिए? यह सब जानना, इसलिए हम मनुष्यों में विशेष गुण है ये मेंटल मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स दोनों। आप कुत्ते को कितना भी मारो, वो जानवर को कितनी भी लाठी मारो, वो कभी इस प्रकार से आपसे रूठ के नहीं बैठ जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को आपने 10 साल पहले कुछ बोल दिया, वो 10 साल पहले की बात भूलता नहीं। 10 साल पहले याद है तूने मेरा फोन नहीं उठाया था, बोला भी नहीं कुछ, खाली फोन नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया। इसके ऊपर लोगों के झगड़े चालू हो जाते हैं। और आजकल तो क्या ये सेलफोन का जमाना है, तो इसमें तो पहले तो क्या लैंडलाइन हुआ करता था, तो पता ही नहीं लगता था कि किसका फोन है। अभी तो मालूम है मेरा फोन, नाम भी आता है उसके साथ, बज भी रहा था फिर भी नहीं उठाया, और उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किया। एक तो फोन मेरा उठाया नहीं, और उसके बाद में पूरे दिन भर वापस कॉल नहीं किया, मैंने मैसेज भी किया, ये सब लेके तो फिर अलग अलग उसको बहाने देने पड़ते हैं कि अरे अरे मैं बिजी था, बिजी था, मैं वापस 5 मिनट फोन किया तो तुम्हारा फोन बिजी था, किसी और से बात करने के लिए टाइम है तुमको, मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं। तो देखिए ये सारे जो हम मनुष्यों के अंदर ये झगड़े भी सूक्ष्म स्तर पर कैसे शुरू होते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें वो सूक्ष्म क्वालिटी दी है भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए। और जब उसका विकृत स्वरूप इस भौतिक संसार में देखा जाता है तो इतने सारे प्रॉब्लम, तकलीफें, टेंशन, मतभेद, झगड़े परिवारों में, समाजों में, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र क्या क्या नहीं होता। तो अब यदि हम एक उदाहरण लें कि किसी खाद्य पदार्थ का, तो किसी खाद्य पदार्थ का आस्वादन ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये अलग अलग प्रकार से करती। जैसे कि साइट, हम क्योंकि भगवान विषय के विषय में बता रहे हैं ना, ध्याय तो विषयान, तो ये सारे जो विषय हैं साइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट। तो अब यदि हम लें कि कोई भी खाद्य पदार्थ है तो उसका संपर्क किससे आता है? हमारी जिह्वा से आता है, है कि नहीं? लेकिन यदि मैं पूछूं कि क्या केवल जिह्वा से उस खाद्य पदार्थ का संपर्क आया है, क्या इतना ही काफी है उसका आस्वादन करने के लिए कि उससे ज्यादा भी कुछ हम चाहते हैं उसके अंदर? आप ये कुक बुक्स देखो, कुक बुक्स, उसमें कैसे सजा के वो लोग फोटो वोटो, हाई रेजोल्यूशन के फोटो दिखाते हैं, है ना। कहीं आप शादियों में जाओ तो वहां पर कैसे सजा के वो बफे लगाया जाता है। तो वो किसके लिए? अब वो तो आंखों के लिए है ना। अब उसको जब कोई खाना शुरू करता है तो उसकी हालत क्या होती? जो इतना सजा, केक, आप केक लीजिए, केक को कितना अच्छे से सजाते हैं, वही केक जब पूरा मुंह में चबाने के बाद वापस से सजाओ उसको निकाल के, कितना अच्छा लगेगा वो। दूसरे दिन की बात नहीं पूछ रहा, दूसरे दिन तो हम क्या हालत करते हैं उस केक की। तो ये उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया गया कि एक खाद्य पदार्थ को हमारी सारी इंद्रियां कैसे आस्वादन करना चाहती। तो दिखने में शक्ल ठीक होनी चाहिए उसकी, है ना, तो फिर इच्छा होती है खाने की। फिर साउंड, साउंड का अर्थ क्या है कि वो खाद्य पदार्थ का नाम, वो नाम भी आजकल समाजों में देख, हमारे मनुष्य समाज में वो खाद्य पदार्थ के नाम भी ऐसे देते हैं कि नाम सुन के ही आपको खाने की इच्छा होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपको मालूम है स्क्रीन पे फोटो है, खाली इच्छा हो गई ना, साइट, आंखों ने देखा। और फिर यदि मैं ये आपको दिखाता भी नहीं लेकिन खाली इसका नाम बोलता, क्या नाम है देखो, सब जानते हैं आप इसका नाम, क्योंकि इस हमने जब भी इसका आस्वादन किया है तो उसका नाम के साथ भी हमारा संपर्क हुआ है ना। अब यही गुलाब जामुन, अब इसको यदि मैं दूसरे नाम से आपके सामने प्रस्तुत करूं या बोलूं आपको कि आपको खाना है क्या, लेकिन दूसरा नाम दूं इसको, तो आपको इतनी इच्छा नहीं होगी, गुलाब जामुन। कैसा लगा? नहीं, लेकिन गुलाब जामुन क्या, रसगुल्ला, है ना, केवल गुल्ला नहीं, वो रस का गुल्ला। तो वो जब सुनते हैं, और बंगाली लोग तो रसगुल्ला एकदम, वो और भी उसको मीठा बना के बोलते हैं कि वो खाने की जरूरत नहीं, बस वो बोलने से ही रसगुल्ला, अरे बाप रे। तो अभी ये अगर, अब ये किसका बनता है, मैदे का बनता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं मैदे के कंचे खाएंगे, मैदे के कंचे कैसा लगता है, मैदे के कंचे, कंचों की तरह दिख रहे हैं मैदे के कंचे, या मैदे की गेंद, जैसे मैं जब अभी हाल ही में गया था एक क्रूज पर, तो वहां पर एक अपना इंडियन वेजिटेरियन कुकबुक था वो क्रूज पर। तब देखिए उसमें एक सब इंग्लिश में था क्योंकि वेस्टर्नर्स के लिए था वो, लेकिन अपना इंडियन कुकिंग, इंडियन रेसिपीज लेकिन वेस्टर्नर्स के लिए। तो उसमें एक आइटम था जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ था फ्राइड पफ्ड अप ब्रेड। तभी मुझे लगा कि बहुत कुछ स्पेशल कोई आइटम होगा, फ्राइड पफ्ड अप ब्रेड। तो मैंने पढ़ा पूरी। अब वो पूरी को वेस्टर्नर्स को कैसे समझाओगे? तो क्योंकि वो लोग आटे का बना है इसलिए उसको ब्रेड बोलते हैं। अब उसको जब फ्राई करो तो पफ्ड अप, पूरी फूलती है ना। अब देखो वो उन्होंने उसको जो नाम दिया, वो नाम सुन के खाने का मन करता है, लेकिन जब पता लगा तो पूरी है, तो आपने तो हर स्टेशन पे मिलती है। जैसे संस्कृत में, आप बताइए ये संस्कृत में इसका ट्रांसलेशन हुआ है ये आइटम का, इसको कहते हैं दुग्ध शर्करा युक्त हीम शीत घनगोल गट्टू, आइसक्रीम। ये संस्कृत में आइसक्रीम को दुग्ध शर्करा मतलब दूध और शक्कर युक्त और फिर हीम शीत जिसे ठंडा किया गया घनगोल गट्टू मतलब फ्रिज में रखा हुआ गट्टू बना उसे, वो आइसक्रीम। आजकल तो पता नहीं होटलों में क्या क्या नाम देते हैं, समझ में ही नहीं आता। मतलब वहां पर मैं देख रहा जूसेस के नाम और एक एक आइटम का नाम है गड़बड़। अभी देखो डर लगेगा उसको, नाम ये गड़बड़ तो सोचो अंदर जाके क्या करेगा, भारी गड़बड़ तो अंदर तो और भी पहले से गड़बड़ चल रही है। तो यहां पर शास्त्रों में ये बताया गया है कि एक यदि हम विषय वस्तु को लें तो उसके साथ हमारी बाकी इंद्रियां भी जुड़ती हैं, उसमें सुगंध या जो भी गंध अच्छी होनी चाहिए, उसका साइट, उसका साउंड, उसका स्मेल और फिर लास्ट टेस्ट तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि अभी ये गुलाब जामुन है, अब ये गुलाब जामुन आप किसी को दो तो ज्यादातर उसको ये समझ में आता है कि गुलाब जामुन नरम होना चाहिए ना, और पापड़, पापड़ कड़क होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी को आप वही जीवा है जो गुलाब जामुन भी खाएगी पापड़ भी खाएगी, लेकिन अगर पापड़ एकदम गुलाब जामुन की तरह नरम दे दिया उसको, और गुलाब जामुन पापड़ की तरह एकदम करारा, तो मन क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, अरे वही है ना, जीवा तो एक ही है, नहीं मन है ना, लेकिन अंदर वो मन बोल रहा है कि गुलाब जामुन खा रहा है तू, अभी उसको नरम खाना चाहिए, है ना। तो ये मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे भगवान जब ये बोल रहे हैं कि विषय, लेकिन उस विषय के पीछे ध्यान हमारे मन का होता है, तब जाकर उस विषय या सेंस ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यू मिलती है। ये मुझे किसी ने ईमेल में भेजा था, अभी मुझे ध्यान है आप लोग कोई देख नहीं रहे कि वो क्या क्या आइटम है। तो अब देखिए यहां पर आप लोग ज्यादा जानते होंगे, तो कुछ थोड़ा मैचिंग बराबर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है ना, कुछ यहां वहां शब्द मिल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो आप मन में कंफ्यूज हो गए अभी कि ये खाने की वस्तु है देखने की वस्तु है क्या है। इसलिए भगवान जब बोल रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसाम, कि हमारा जो मन है वो इस प्रकार से ध्यान करता है किसी भी विषय वस्तु का कि अपने सारी इंद्रियों को उसमें लगा दें और मन उसको पूरी इंद्रियों को एक विषय वस्तु में लगाने की चेष्टा करता है, ये मनुष्य का मन बताया गया। अब यदि हम
भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लें तो जैसे ये उदाहरण हमने एक गुलाब जामुन का पहले लिया, अब भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लें तो ये फिर पांच चीजें यदि मैं पूछूं तो क्या भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं? हाँ अवश्य, क्योंकि भगवान के जो अर्च विग्रह हैं, भगवान के अर्च विग्रह हमारे सारी इंद्रियों को और हमारे मन जो कि हमारे इंद्रियों का सरदार है, हमारे सारे इंद्रियां और मन को अपने सेवा में लगाने के लिए आते हैं। चाहे वो हमारी आंखें हो, हमारा नाक हो, हमारी जीवा हो, त्वचा हो, हमारी हर एक इंद्रिया। इसलिए अर्च विग्रह की जो सेवा है वो एकमेव सेवा है जिसके द्वारा, जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण हमने पिछली बार लिया था कि अम्बरीश महाराज उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के अर्च विग्रह की सेवा में लगाया और तब जाकर उनका मन शुद्ध हुआ और उनकी इच्छाएं कामनाएं और जो हमने श्रृंखला आज के श्लोक की ली कि ध्यान केंद्रित कहां पर हुआ, अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के अर्च विग्रह के ऊपर। तो जैसे अर्च विग्रह को हम अपनी आंखों से देखते हैं, अर्च विग्रह को जो अर्पित पुष्प हैं उनको सूंघते हैं, अर्च विग्रह की कीर्ति का गान सुनते हैं कानों से, अर्च विग्रह को अर्पित भोग जो प्रसाद में परिणित होता है उसका आस्वादन करते हैं, और अर्च विग्रह की व्यक्तिगत सेवा करने से हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है वो शुद्ध होती है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में यदि हम ये सारी हमारी पांचों इंद्रियों को लगाएं, वही उनका उद्देश्य है। और यदि आज के श्लोक को हम लें तो भगवान ने आज के श्लोक में क्या क्या कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, काम क्रोध उप भी जायते। उसमें यदि हम विषय के बदले कृष्ण को डाल दें, ध्यायतो कृष्ण पुंसाम, तो क्या होगा? फिर होगा वही जो भगवान आज के श्लोक में कहे हैं, आसक्ति। लेकिन किसके प्रति? अब भगवान के प्रति आसक्ति, और इसके पश्चात कामनाएं आएंगी। लेकिन कौन सी कामनाएं आएंगी? कृष्ण की सेवा, उनकी वैसी कामनाएं आएंगी, स्वयं की इंद्रिय भोग की कामनाएं नहीं। और लोभ, किस प्रकार का लोभ? और सेवा करने का लोभ। लेकिन क्रोध के बदले प्रेम जागृत होगा। तो इसलिए यहां पर भगवान इस श्लोक से पहले जो श्लोक कहे जिसमें मत परह, तो भगवान ये संकेत अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन तुम विषय वस्तु को छोड़कर मुझ पर वो ध्यान केंद्रित करो। और जब हम भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विशेष रूप से इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में जो अवतरित हुए हैं, तो भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र में रूप गुण और लीला ये साथ साथ, मतलब जैसे भगवान ने आज के श्लोक में कहा कि ध्यान में विषय वस्तु के ध्यान में छिपा हुआ है वो आसक्ति, उस आसक्ति में छिपी हुई हमारी कामनाएं और उस कामनाओं में हमारा क्रोध या लोभ छिपा हुआ है। तो वैसे ही भगवान का जो नाम है उसके अंदर भगवान का रूप छिपा हुआ है, भगवान के गुण छिपे हुए हैं और भगवान की लीलाएं उसके अंदर छिपी हुई हैं। हमें करना क्या है? केवल ध्यान, ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेना है। इसलिए जब हम 10 नाम अपराध कहते हैं तो 10 नाम अपराध में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम कहते हैं, ध्यान पूर्वक नाम जप भगवान का करना। और जब हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो अवश्य ही भगवान का नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं को हमें दिखाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। तो इसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए आगे भगवान अब बताएंगे कि वो क्रोध जब उत्पन्न होता है तो फिर उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो ये दोनों श्लोक कनेक्टेड हैं, लेकिन ये आज का श्लोक इसके अंदर ही इतना गहरा गुह्य ज्ञान है, तो इसलिए हमने केवल ये एक ही श्लोक लिया, नहीं तो ये दोनों श्लोक भगवान ने कनेक्टेड सुनाए हैं। उसकी चर्चा हम अगले बुधवार को करेंगे। हरे कृष्ण।